ओम शांति। ओ स्नेह सागर, क्या तेरे स्नेह में नैनों को जैसे भिगोए हुए हैं, नैन सजल हो गई किसके प्यार में, नैन सजल हो गई, नैन भीग गए किसके प्यार में, और जिसके प्यार में हो गई वो अब आ रहा है। बच्चों के स्नेह के रिटर्न में बाप दादा क्या देते हैं, वरदान देते हैं। कौन सा वरदान देते हैं? स्नेह का और समर्थपन का वरदान देते हैं। किसके रिटर्न में? स्नेह के रिटर्न में। वरदान सहज किसको मिल जाता है? जो सदा अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर बाप दादा से मिलन मनाते हैं, उन्हें वरदान सहज ही प्राप्त होता है। एक है पुरुषार्थ से वरदान प्राप्त करना, दूसरा है स्नेह में समा जाना, स्नेह में खो जाना, और उससे वरदान सहज प्राप्त होता है। जो संस्कार बाप में है, आज के मुरली में महावाक्य आया है क्या, वो आत्मा में भरे जाते हैं। जो गुण बाप में है वो बच्चों में प्रत्यक्ष होते हैं। जो गुण ब्रह्मा के है और जो गुण शिव के है वो क्या होता है? कल की मुरली दूसरों को दिखाई दे, चाल चलन में दिखाई दे, सूरत मूरत में दिखाई दे। जो बाप समान बनने का संकल्प है वो चलन चेहरे से दिखाई दे। तो बाप है स्नेह का सागर, मैं स्नेह का सागर हूं और तुमको भी स्नेह का सागर बनाने आया हूं। साकार महावाक्य चले अभी अभी, मैं कौन हूं? स्नेह का सागर हूं और तुमको भी क्या बनाने आया हूं? स्नेह का सागर बनाने आया हूं। भगवान स्नेह का सागर है, भगवान प्यार का सागर है। उसके पास प्यार के अतिरिक्त और कुछ नहीं। कोई उसे कुछ भी दे, क्या भी दे, परंतु वो क्या देगा? प्यार, स्नेह, क्योंकि वो सागर है जिसका कोई छोर नहीं। ऐसा अनंत बेहद अपरिमित सागर है वो। स्नेह की लहरों में जो बच्चे उसको देख समा जाते हैं, ऐसा वो सागर है। कल की मुरली में बाप दादा ने याद प्यार में क्या कहा था? बाबा भी लवलीन है। किसमें? सुनने में। क्या सुनने में लवलीन है? कल की मुरली याद प्यार, स्नेह के गीत सुनने में, रूहानी नशे के गीत सुनने में, खुशी के गीत सुनने में, और क्या सुनने में? बच्चों की मीठी मीठी बहुत बहुत क्या दिल को लुभाने वाली बातें सुनने में। भगवान को भी किसमें रस है? बच्चों के गीत सुनने में, खुशी के गीत, रूहानी नशे के गीत, आनंद के गीत, परमात्मा प्रेम के गीत सुनने में भी वो मगन है। लगन, उसको भी लगन है। कितनी अद्भुत सी बात है। तो आज की मुरली में बाबा ने क्या महावाक्य उच्चारण किए, पहले तो वहां से चालू करते हैं। पूर्ण रखना है सतो प्रधान कैसे बने, और माया क्या कर देती है? माया आत्मा के पंख को तोड़ देती है, माया चंबे में ले आती है, माया हर समय याद को भुलाती है, माया और क्या करती है? चार्ट रखने नहीं देती। सोचो कोई पंछी जिसके पंख टूट गए हो, कैसी हालत होती है उसकी? रोता है, बिलखता है, तड़पता है। तो माया ने आत्मा के पंख को काट दिया है, तोड़ दिया है। तो आत्मा की स्थिति कैसी हो गई है? दयनीय स्थिति हो गई है। और क्या कहा आज? बाबा कौन है? खुशियों का सागर है। क्या देने आया है? अखुट खुशियां, अखुट खुशियों के खजाने देने आया हुआ है। तो क्या कोई भी परिस्थिति में क्या हो सकता, क्या होगा? खुशी गायब नहीं हो सकती। और क्या होगा? कोई भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं हो सकती। और दूसरी बात, फिकर नहीं हो सकती। और क्या हो जाएगा? परिवार का क्या होगा, प्रॉपर्टी का क्या होगा? परिवर्तन तो होना ही है। ब्राह्मणों के साथ जो भी होगा वो कैसा होगा? अच्छा ही होगा। बुरा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ये युग कौन सा है? कल्याणकारी युग है। बाप कौन है? कल्याणकारी है। बच्चे कैसे हैं? विश्व कल्याणकारी। समय कौन सा चल रहा है? ड्रामा कैसा है? कल्याणकारी। अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा छिपा हुआ है। हमें उसे देखना है, उसे समझना है। और ये संसार का खेल कैसा है? ये संसार कैसा है? एक अलौकिक खेल है, एक लीला धाम है। यहां हम किस लिए आए हैं? लीलाएं करने आए हैं। अवतार किस लिए आते हैं संसार में? लीला करने आते हैं ना। तो हम सब कौन है? तुम एक एक अवतार हो। हम यहां लीलाएं करने आ रहे हैं, युग को परिवर्तन करने आए हैं, संसार की काल की गति, काल चक्र को बदलने आए हैं। इतना ऊंचा हमारा कार्य है। कल की मुरली में था ना, तुम सब कौन हो? जड़े हो, फाउंडेशन हो। तुम्हारी लहर विश्व में फैलती है। जो तुम सोचोगे वो विश्व में होगा। इस संसार के आधार तुम हो, सब कुछ तुम पर निर्भर है। संसार की गति, संसार की दिशा और दशा तुम निर्धारण करते हो उसका। ऐसी तुम ऊंच आत्माएं हो, महान आत्माएं हो। तो ये संसार क्या है? एक अलौकिक खेल है। और ये परिस्थितियां क्या है? खिलौने हैं। अगर ये स्मरण में रहा तो क्या हो जाएगा? कभी निराशा नहीं आएगी। तो कल हम इसी समय किसके सामने होंगे? खुशियों के सागर के सामने होंगे। और किसके सामने होंगे? स्नेह के सागर। और किसके सामने? क्षमा के सामने। रूहानी कमांडर, सुप्रीम कमांडर के सामने आएंगे। क्या कर रहा होगा वो? अपनी सेना में शक्ति भर रहा होगा। भगवान के दिल में कौन और बच्चों के दिल में कौन? इससे पहले कि हम कल की मुरली पर जाए, हम पिछली मुरली रिवाइज करेंगे। अव्यक्त वाणी 14 तारीख, ये कौन किससे मिलने आया था तब, और वो सभा कैसी थी? याद है? वैसी ही सभा कल भी होगी या उससे भी अधिक सुंदर होगी। कैसी थी वो सभा? कैसा था वो मिलन? वंडरफुल था। कैसा था वो मिलन? अद्भुत था, अलौकिक था, अनूठा था, अद्वितीय था और वैल्यूएबल था, अमूल्य था। उसके सामने संसार निर्मूल्य है, उसका कोई महत्व नहीं है। संसार के जो भी क्रियाकलाप सब गौन है, क्योंकि ये मिलन कितना ऊंच है और न्यारा था और प्यारा था। और दृश्य कैसा था? विचित्र था। और बाप दादा क्या देख रहे थे उस दृश्य में? श्रृंगार देख रहे थे। और ये मुलाकात कैसी थी? बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर मुलाकात थी। आत्माओं की परमात्मा से मुलाकात थी। कौन से सामान दिए थे बाबा ने हमको? दिल के, बाप दादा के दिल के कौन हो? दीपक हो, बाप दादा के नैनों के नूर हो। तो नशा चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है? हमारे उधर एक विदेशी मरीज आया था, इतना खुशियों में नाच रहा था, दूसरे दिन ही बाबा की मुरली चली तो कह रहा था कि बाबा ने कहा द लैम्प ऑफ माई हार्ट, माई हार्ट द लैम्प्स ऑफ माई हार्ट, दिल के दीपक। कितना नशा था उसको। तो हम सब कौन है? बाप दादा के नैनों के नूर, बाप दादा के दिल के दीपक, बाप दादा के दिल में समाई हुई आत्माएं हैं। ये मिलन भी कैसा है? ये दिल का मिलन है। ये मिलन भी कैसा है? केवल संगम युग पर होता है। इस मिलन का अधिकार केवल तुमको है। ये मिलन केवल होता है इस समय, इसी संगम युग पर होता है, और कोई समय पर यह मिलन नहीं होता। वैल्यूएबल, वंडरफुल, बड़ा सुंदर, ऐसा अद्भुत मिलन। संसार की आत्माएं भटक रही है, ढूंढ रही है, हमने उसे पा लिया। आज की मुरली में बोला ना, अगर निश्चय है तो क्या कहेंगे? भाग कर आएंगे, कहेंगे वाह, भक्ति में जिसको हम ढूंढते थे, ठोकरें खाते थे, धोखा खाते थे, वो अब हमें मिलने आया है। तो क्यों ना आए, भाग भाग कर आएंगे उससे मिलने के लिए। और बाबा ने सबसे पावरफुल महावाक्य कौन से उच्चारण किए थे? वैसे जैसे ये होमवर्क दिया था, जैसे तुम्हारे दिल में बाप समाया हुआ है, वैसे हरेक के दिल में बाप समाया आ जाए, हरेक के दिल में बाप आ जाए, जैसे अभी तुम्हारे दिल में समाया हुआ है, वैसे हरेक के दिल में वो आ जाए। जो आज तुम गीत गाते हो बाप के, जैसे अभी गीत सुना ना, ओ स्नेह सागर, ये गीत आज ब्राह्मणों का है, एक दिन समूचे विश्व का होगा। हमारे जो भी गीत है वो आज हमारे हैं केवल, पर एक समय आएगा जो सबका होगा, वो सारे गीत सबके होंगे। तो हर एक दिल में बाबा आ जाए। एक मुरली है 31 दिसंबर 2005 ईस्टर्न जोन से मुलाकात, जिसमें बाबा ने कहा है एक समय ऐसा आएगा कि कोई भी रेडियो ऑन करो और कोई भी टीवी ऑन करो, बस एक ही गीत सुनाई देगा उसमें, हमारा शिव बाबा आ गया। ईस्टर्न जोन से मुलाकात में बाप दादा ने कहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि कोई भी रेडियो और कोई भी टीवी ऑन करो तो केवल एक ही गीत होगा, हमारा शिव बाबा आ गया। और क्या उच्चारण किए महावाक्य बाबा ने? दो आवाजें सुनाई दे रही थी बाबा को उस हॉल में, दो आवाजें गूंज रही थी। कौन सी आवाजें थी वो? वाह बच्चे वाह, और वाह बाबा वाह, ये दो आवाजें गुंजायमान थी उस हॉल में। और हाँ, वो तो जो मेजॉरिटी की आवाज, जो दूर बैठे उनकी आवाज, पर ये दो आवाजें जैसे उस सभा में गूंज रही थी। और क्या कहा था बाबा ने? जहां बाप है वहां, जहां बाप है वहां कोई भी बात आ नहीं सकती। जहां स्वयं भगवान उपस्थित है, संसार की कोई भी बात, संसार का कोई भी विघ्न, संसार की कोई भी समस्या आ नहीं सकती, जहां स्वयं सर्वशक्तिवान है। हाँ, वो एक दूसरा महावाक्य था, जहां बाप है वहां कोई भी बात आ नहीं सकती। आप अगर खुश नहीं रहोगे तो कौन रहेगा? खुशी क्या है? खुराक। वो खुराक मिले ना मिले, सबसे अच्छी से अच्छी खुराक ये है। ये खुराक भी है तो ये दवाई भी है। जो खुश है तो बीमार नहीं, जो खुश है वो बीमार नहीं, जो वरदानों से पल रहे हैं वो बीमार नहीं। हरदम बाबा यहां नहीं आ रह सकता, इसके लिए किससे चला रहा है? वरदानों से चला रहा है। भगवान हो नहीं सकता हर समय यहाँ, गीत है एक, इसके लिए वरदानों से चला रहा है। ये खुशी बीमारी को आने नहीं देगी, दो काम है उसके, ट्रीटमेंट भी है तो प्रिवेंशन भी है। खुशी जैसी कोई दवाई नहीं, कोई खुराक नहीं, और जहां खुशी है वहां पर कोई भी बीमारी आ नहीं सकती। और खुश कौन रहेंगे, हम खुश नहीं रहेंगे कि तो संसार वाले खुश रहेंगे। कल की मुरली सुनी ना, हद की इच्छाओं में फंसे हैं, हद की इच्छाओं से उन्हें बचाओ। क्या कहा बाबा ने, हद की इच्छाओं से बचाओ, छुड़ाओ नहीं बचाओ। हद की इच्छाओं से दुखी है, परेशान है, बेचारे है, अशांत है, हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन खुश रहेगा, अब खुश नहीं रहेंगे तो कब खुश रहेंगे। तो जो महावाक्य है इसको पक्का कर लो, ये दो महावाक्य बाबा ने जो उच्चारण किए थे। कहां से चालू करेंगे, शैलेंद्र भाई, जहां बाप है वहां आ नहीं सकती। प्रभाकर भाई चालू करो जोर से और बुलंद आवाज में, कोई भी बात आ नहीं सकती। बाप है वहां पाप नहीं है, बाप है वहां कोई भी बात आ नहीं सकती। बुलंद आवाज में सुनो पहले ठीक से और फिर बोलो। बोलिए माता जी, और एक कोशिश। हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन खुश रहेगा माता जी, अभी खुश नहीं रहेंगे तो कब खुश रहेंगे। तो बाबा की आज की मुरली में क्या है, विद्यार्थियों को बुद्धि में क्या रहती है, विद्या। स्टूडेंट को बुद्धि में क्या रहती है, पढ़ाई। तो बुद्धि में अच्छे अच्छे पॉइंट्स, मुरली का लास्ट पैराग्राफ, विद्यार्थी धारण करने हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स धारण करने हैं। एक एक महावाक्यों की कीमत कितनी है, लाखों की है। वैसे ही पढ़े नहीं रहने दो उसे, एक एक उठाकर उसे बुद्धि में रखो, तो वो एक एक पॉइंट परिस्थितियों के समय शक्ति बन जाएगी। पॉइंट छोटी सी होगी, वाक्य छोटा सा होगा, परंतु वो वाक्य ही शक्ति का काम करेगी। ज्ञान का गुटका क्या है, मन मना भव। तो बुद्धि किससे भरी हो, ज्ञान रत्नों से, लबालब भरी हो, आकंठ भरी हो, इतनी भरी हो कि वो सराबोर, इतनी भरी हो कि वो निकलना चालू करे, और क्या बाढ़ आ जाए। आज की मुरली में भी ये भी बोला है, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे, टप 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 टप, बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे, ओवरफ्लो, ऐसी तुम्हारी स्थिति हो। तो जहां बाप है, जहां बाप है वहां कोई भी बात आ नहीं सकती, और अब खुश नहीं होंगे तो कब खुश होंगे। कई समय से बाबा खुशी की ही बातें कर रहा है, खुश रहो और खुशी बांटो। कल भी, कल क्या कहेंगे बाबा, कोई गेस, खुश सदा खुश रहो और दिल खुश मिठाई बांटो, और देखेंगे किसका सही आता है, किसकी लाइन क्लियर है। बोलो दीपावली, चैतन्य दीपकों को देख रहे हैं, चैतन्य दीपक वरदान था उस दिन, जागती ज्योत। खबरदार, माया तुमको खाली करने की कोशिश करेगी, परंतु तुम कौन हो, खबरदार, सुजाग और जागती ज्योत। कौन है वो, जो स्वदर्शन चक्रधारी है। तो बाबा क्या चैतन्य दीपकों के बारे में कहेंगे, और क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं। अब तो जान लिया ना, बहुत समय से रह रहे हैं उसके साथ, जब लंबा समय किसी के साथ रहते हैं तो उसका स्वभाव तो पता चल जाता है, और क्या कह सकता है। हम्म, उस पर चलेगी, सुमान देंगे, जहान के नूर, नैनों के नूर समाये हुए। तो अभी कल की मुरली रिवाइज करते हैं। कल क्या कहा था बाबा ने, कौन किससे मिलने आया है, बाप दादा किसको देख रहे हैं, अति स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। किससे मिलने आए हैं, अति स्नेही बच्चों से मिलने आए। मुरली है 18 जनवरी की। कौन सा दिवस है ये, अव्यक्ति दिवस। कौन सा दिवस है ये, समर्थ दिवस। कौन सा दिवस है ये, बच्चों को प्रत्यक्ष करने का दिवस। कौन सा दिवस है ये, यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिवस। कौन सा दिवस है ये, बाप समान बनने का दिवस। कौन सा दिवस है ये, विल पावर देने का दिवस। कौन सा दिवस है ये, बच्चों के कार्य में तीव्र गति लाने का दिवस। कौन सा दिवस है ये, स्मृति दिवस, सो समर्थ दिवस। जो पाना है, जितना पाना है, वरदान का भंडार, जितना पाना है वो पाने का ये दिवस था। अमृत वेले से ही बच्चे क्या थे, स्नेह में लहरा रहे थे, और बाप दादा भी लवलीन थे याद प्यार में, क्या सुनने में, मीठी मीठी बातें सुनने में, गीत सुनने में। उस दिन वैसे बोला था, बाप दादा को गीत कविता पसंद नहीं है, बोला था ना, परंतु बच्चों के गीत बाबा को बहुत अच्छे लगते हैं सुनना। और बाप भी एक गीत गाते हैं, कौन सा गीत है बाबा का, हमारे हजारों गीत है, बाबा का एक ही गीत है बस, ओनली वन ऑल टाइम फेवरेट गीत। कौन सा है उसका, दूसरा कोई गीत ही नहीं है उसके पास, एक ही गीत है, इतना पसंद है उसको, इतना पसंद है कि एक ही वाणी में, एक ही भाषण में, एक ही व्याख्यान में न जाने कितनी बार गा देता है। कितना पसंद होगा उसका, सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत है उसका, कौन सा, वाह बच्चे वाह, बहुत ही प्रिय लगता है, खुद ही को नशा चढ़ता है, भगवान को भी अपना ही गीत सुनकर। तो इस स्नेह का दिवस, ये दिवस कौन सा है, स्नेह का भी दिवस है, ये विशेष स्नेह का दिवस है। इस स्नेह के दिवस में ब्रह्मा बाबा को क्या टाइटल दिए बाबा ने, भाग्य विधाता, और क्या टाइटल दिया, भंडारी, और क्या टाइटल दिया, माँ, जैसे वो माँ क्या करती है, छत्र छाया बनती है, वैसे ये माँ अमृत वेले से लेकर तो बच्चों की क्या करती है, देख रेख की रेख देख, शक्ति, उमंग उत्साह और हिम्मत से पालना करती है, उमंग उत्साह हिम्मत और शक्ति से पालना करती है। जो अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर बाप से मिलन मनाते हैं उनको वरदान सहज प्राप्त हो जाते हैं, सहज, जैसे कि कोई गिफ्ट, गिफ्ट मांगी नहीं जाती है, स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, मेहनत नहीं है। पहले तुम्हारा स्नेह कैसा था, बिखरा हुआ था, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं थोड़ा इधर कहीं थोड़ा उधर, अब कैसा है, सर्व एक से। सच्चा स्नेह जो है वहां पर वरदान प्राप्त होता है, विशुद्ध स्नेह जहां है, जिस स्नेह में कोई मलिनता नहीं है, जिस स्नेह में कोई दोष नहीं है, जिस स्नेह में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कामनाएं नहीं है, कोई वासनाएं नहीं है, ऐसा विशुद्ध जहां स्नेह है वो भगवान को प्रिय है। जो हृदय शुद्ध है वो उसे अति प्रिय है, बहुत प्रिय है। राम को वन में पूछते हैं, राम ऋषियों को पूछता है कि हे ऋषियों मैं कहां रहूं 14 साल, ऋषि कहते हैं राम जाओ उस हृदय में रहो जो शुद्ध है, वही तुम्हारा स्थान है रहने का, और तुम कहां रहोगे। तो भगवान को कौन प्रिय है, शुद्ध, जहां दिल का स्नेह है, जहां अविनाशी स्नेह है। प्रीत, मीत, गीत और रीत, ये विधि है अशरीरी बनने की। ऐसा मीत तुमको कहीं मिलेगा जो शमशान के भी आगे चलता है, जो सच्चा मीत है, ऐसे मीत से किनारा नहीं करो। वो दुख हरता सुख करता नहीं हो सकते, वो तो केवल सहयोग देंगे, पर ये मीत कैसा है, दुख हरने वाला है, हरी कहा जाता है उसे भक्ति में, हर लेता है वो दुखों को, दर्द को और पीड़ा को। हरि का एक अर्थ होता है लुटेरा, लूट लेता है वो आत्मा के दुखों को। तो परमात्मा प्रीत, परमात्मा प्रीत, ऐसी प्रीत और ऐसा मीत, उसमें खो जाना, उसकी यादों में खो जाना, यही विधि है आचार्य बनने की। तो हम कहते हैं जो दिल का स्नेह है वो उसे आकर्षित करता है, वो उसको खींचता है। दिखाया है विभीषण राम की शरण में आता है, सब लोग कहते हैं कि इसको मत लेना, क्यों? क्योंकि ये रावण की कोई चाल हो सकती है। परंतु श्री राम क्या कहते हैं उसमें कि ये शुद्ध हृदय से मेरे पास आया है। निर्मल मनजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जिसका है सो मोहि पावा, वो मुझे प्राप्त होता है, मुझे उपलब्ध होता है। मोहि कपट, जिसके हृदय में कपट है, छल है, षड्यंत्र है, वो उसे प्रिय नहीं। मोहि कपट छल जहां पर है, छिद्र, छिद्रान्वेषण करना, दूसरों को देवोश देखना। लास्ट संडे की मुरली, मधुबन निवासियों से मुलाकात, सेकंड पैराग्राफ। एक निजी गुण बना लो, कौन सा? किसी के अवगुण को, कमजोरी को, व्यर्थ की बातों को ना देखेंगे और ना ही धारण करेंगे, वर्णन धारण भी नहीं करेंगे और वर्णन भी नहीं करेंगे। शुभ भावना रखेंगे, आगे बढ़ाने की भावना रखेंगे, परिवर्तन की भावना रखेंगे। तो बाबा को ये पसंद है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे प्रिय ही नहीं है। तो दिल का स्नेह जहां है वहां भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ वो वैसे ही दे देगा, सारे वरदान। जो वरदान चाहते हो, क्या वाक्य था कल में, जो वरदान तुम चाहते हो वो स्वतः ही मिल जाएगा। जिस कमजोरी से तुम छूटना चाहते हो वो कमजोरी से स्वतः ही छूट जाओगे, अगर परमात्मा प्रेम का स्तर, लेवल इतना बढ़ जाए तो। तो पहले स्नेह बिखरा हुआ था, अब एक से है, अब एक से सर्व संबंध है। इस संसार के जो भी स्नेह है वो कैसे है? स्वार्थ है, उसमें दुखदाई है। संसार के जो संबंध है वो कैसे है? सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। संसार के जितने हैं वो स्वार्थ के लिए प्रेम करने वाले, परमात्मा प्रेम ऐसा ही है जो निस्वार्थ है, उसका प्रेम कभी कम नहीं होता है, वो उतना ही है हमेशा ही। उसके बाद में क्या कहा फिर? स्नेह का रिटर्न क्या देना है? स्नेह का रिटर्न बाप समान बनना, स्नेह को स्वरूप में लाना, ऐसा स्वरूप में लाना कि दूसरी आत्माओं को भी क्या अनुभव हो। इनको बनाने वाला कौन, कैसे बने, कब बने, किसने बनाया, खुद ही सोच में पड़ जाए। नयन में क्या साधारणता नहीं, अलौकिकता, उनके नयन, उनकी वृत्ति, उनकी दृष्टि, उनके बोल और उनके वाइब्रेशंस न्यारे है, जैसे मधुबन का उदाहरण दिया, जैसे यहां मधुबन में क्या है, ब्रह्मा बाबा के त्याग, तपस्या और कर्म के वाइब्रेशंस समाये हुए है, इसके लिए यहाँ न्यारापन है। विशेष आत्माओं के वायुमंडल है, यहाँ पर तपस्या का वायुमंडल है, इसके लिए अलौकिक है। तो जैसे यहां वैसे कर्म क्षेत्र में भी, या जहां पर भी हो वहां क्या अनुभव हो दूसरी आत्माओं को, इनके बोध दृष्टि वृत्ति से न्यारापन, अलौकिकपन, साधारण नहीं, ऐसा अनुभव। तो ये कब होगा? बाबा ने तो मुरली कहां से चालू की? स्नेह से। स्नेह से क्या क्या होगा, और फिर स्नेह का रिटर्न, स्नेह का स्वरूप साकार में जब हमें दिखाई दे तो दूसरी आत्माओं को क्या अनुभव हो, इसके ऊपर आ गए। और मुख्य जो बात कल की मुरली में थी, वर्तमान वायुमंडल के अनुसार क्या होना चाहिए, अब बेहद की वैराग्य वृत्ति, साधना का वायुमंडल, तपस्या का वायुमंडल, वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल, ऐसी तपस्या हो कि अव्यक्त हो जाए वायुमंडल, शक्तिशाली वायुमंडल हो जाए। उसके लिए हमारी स्थिति भी वैसी शक्तिशाली चाहिए। अगर हम व्यर्थ में है, यहां वहां की बातों में है, किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, इसमें अगर लगे हुए तो हमारी स्थिति अव्यक्त कैसे बनेगी? अव्यक्त स्थिति, पावरफुल स्थिति। बाबा ने कहा पावरफुल तपस्या से, ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया ना। बच्चे लगाओ नहीं, वैभव लगाओ नहीं, साधन थे परंतु दूसरों को दिए, स्वयं उसके प्रयोग से दूर रहे, अनासक्त वृत्ति। तो जब तक वैराग्य नहीं, वैराग्य की चर्चा बहुत कम है, ज्यादा चर्चा सेवाओं की है। वैराग जहां राग नहीं, जहां जहां राग है वहां पर दुख है, जहां जहां राग है आसक्ति है, बेचैनी है, पीड़ा है, वेदना है, पश्चाताप है, बाप से दूर जाना है, व्यक्ति में, वस्तु में, संसार की बातों में, बीती बातों में, जहां जहां राग 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 है वहां पर दुख है। जहां वैराग, वैराग शब्द ही आनंद उत्पन्न करता है हृदय में, वैराग शब्द का उच्चारण करते ही क्या हो जाता है सुशील भाई, दुनिया भूल जाती है। वैराग, वीतराग। बाबा ने कल कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति को फैलाओ वायुमंडल में, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ। आवश्यकता अनुसार बाप दादा ने साधन सबको दिए हैं, चाहे सेवा केंद्र, चाहे घर गृहस्थी, कौन से रहने का, खाने का, पीने का। अगर किसी के पास नहीं है तो अपने ही कारण से नहीं है, अपने ही अलबलेपन, अपने ही आलस के वजह से नहीं है, पर बाबा ने तो सबको दिए। परंतु बाबा ने कल क्या देखा कि साधन ज्यादा और साधना कम, साधना कम हो गई है। जो आए वो देखे और क्या कहे कि ये साधनों के वश नहीं है, साधना में है, ये प्रत्यक्षता चाहिए बाप दादा को। साधनों के अधीन नहीं, बेहद का वैराग केवल साधनों के लिए भी नहीं है, वैराग तो बहुत सारी चीजों से करना है, साधन तो एकमात्र एक उसका छोटा सा भाग है। वैराग किस किस से? देह से, देह भान से, देह के संस्कारों से, देह की इच्छाओं से, देह की प्राप्तियों से, देह की वासनाओं से, देह संसार से, दुनिया से, वो एक वैराग। देह से वैराग, दुनिया से वैराग, इच्छाओं से, व्यर्थ से, निगेटिव से, वाणी बोल से भी वैराग। बोल में कुछ दिन पहले था ना, जब चाहो तब वाणी से परे और जब चाहो तब वाई वाई वैसे ही वाणी से परे जाना भी सहज हो जाए। रूहानी ड्रिल, आत्मा को जब चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, जैसे चाहो टिका सको, स्थित कर सको, ये है रूहानी ड्रिल, इसका अभ्यास करना है। तो वैराग, वैराग की परिभाषा क्या दी बाबा ने? सब कुछ होते हुए भी दूर रहना है, दूर रहना ऋषि का स्वभाव ही है। ऐसा नहीं कि कुछ है ही नहीं और कह रहे हम तो है ही वैरागी, ये कोई बात ही नहीं है। वैरागी वो है कि जिसके पास सब कुछ है परंतु उनसे उससे अनासक्त है, सब कुछ है परंतु अलिप्त है। जैसे आज की मुरली में वाक्य आया है कि आत्मा निर्लेप नहीं है, वो लोग मानते आत्मा निर्लेप है परंतु आत्मा में लेप छेप लगता है, परंतु मैं आत्मा निर्लेप हूं ये समान है। इस संसार की कोई भी बात मुझे स्पर्श नहीं कर सकती, कोई भी परिस्थिति, विघ्न, समस्याएं, कुछ नहीं, मैं आत्मा निर्लेप हूं ये एक समान भी हो सकता है। तो सब कुछ होते हुए भी दूर रहना, ये है वैराग। अब प्रश्न है वैराग कैसे उत्पन्न करें, क्या विधि है वैराग को उत्पन्न करने की? अब घर जाना है, ये विधि है। पिछले संडे की मुरली शिव बाबा ने क्या कहा था कि अशरीरी आत्मा को अशरीरी बनने में मेहनत क्यों? तो ब्रह्मा ने, बाबा ने बीच में हस्तक्षेप किया था कि 84 चोले बदले हैं इसके लिए, परंतु शिव बाबा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या कहा? समय कौन सा है? माना कि 84 चोले बदले हैं परंतु समय कौन सा है? समय है घर जाने का, तो तुम्हारी ड्रेस कैसी होनी चाहिए, लूज, टाइट ड्रेस होगी तो उसको एवर रेडी नहीं कहेंगे, लूज ड्रेस अर्थात एवर रेडी, लूज ड्रेस अर्थात बंधन मुक्त, लूज ड्रेस अर्थात योग युक्त। तुम्हारी ड्रेस ऐसी चाहिए। तो सबसे पहली स्मृति है वैराग लाने के लिए, आज की मुरली में भी है। अब तुम्हारा घर जाने का समय है। अकेले आए, अकेले जाना है, अकेले ही आई थी आत्मा और अकेले ही उसको जाना है। इस संसार में आत्मा का, आत्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं है। जो उसको भास रहा है, भ्रम हो रहा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कोई किसी का नहीं है, भ्रम है, भ्रमित है आत्मा, माया ने बरगलाया है उसको, उसको समझ नहीं आ रहा है कौन मेरा है, इसके लिए भटक रही है, ठोकरें खा रही है। अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। रविंद्रनाथ टैगोर का गीत है बंगाली में, एकला चलो रे, एकलो चलो रे, अच्छा गीत है ना। इफ दे आंसर नॉट टू दाई कॉल वॉक अलोन, अगर वो तुम पुकारो और वो ना आए, वॉक अलोन, अकेले ही चलना है इस जीवन में, इस मार्ग में, इस अध्यात्म के पथ पर, कोई साथ में नहीं है इसमें, ये मार्ग अकेले का ही है। तो ये भाव, भाव कि हमको अब जाना है, वैराग उत्पन्न करेगा। एक दूसरा, वैराग कैसे उत्पन्न करे, वैराग उत्पन्न करने की विधि क्या है? रूहानी ड्रिल, चलो, और बहुत सारा है जिन्होंने बहुत दुख दिया है। संसार के दुखों का थोड़ा चिंतन अगर किए तो भी वैराग आ जाता है। संसार दुखों से भरपूर है, हर संसार के जो लोग हैं वो दुखों में हैं। जन्म में दुख, मृत्यु में दुख, जरा में दुख, व्याधि में दुख, हर चीज में दुख ही दुख है। साक्षी होकर इनको देखना, उनका स्टडी करना, तो भी संसार से वैराग आ जाएगा। केवल साक्षी होकर देखना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म में भी दुख है, मां को भी दुख है, बच्चे को भी दुख है, मृत्यु में तो बहुत दुख है, तड़प तड़प के आत्माएं मरती है। व्याधि, बीमारी हो जाए तो कितना दुख है, बुढ़ापा आ जाए तो कितना दुख है, कोई देखने वाला ना हो, अकेले पड़े हो, सोचो अस्पताल में अकेले आखिरी बेड पर, कोई देखने भी नहीं आता है, कोई मिलने भी नहीं आता है। हॉस्पिटल में ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं जिनके बच्चे छोड़कर जाते हैं, बाद में देखने नहीं आते, छोड़ दिया बस और चले गए। कितने सारे अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम है, लेप्रसी हॉस्पिटल्स में जाओ, जो लेप्रसी हॉस्पिटल, जो कुष्ठ रोग के जो मरीज होते हैं, बच्चे छोड़कर जाते हैं, बाद में कभी नहीं आते देखने, पैरों से बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है। संसार में अथाह दुख है, दुखों के अंबार लगे हैं, इतने दुख है। संसार के दुखों का चिंतन, अभी कितना भी सौंदर्य है पर एक समय आएगा कि ये समाप्त हो जाएगा, क्षणभंगुर है, कुछ नहीं रहेगा। यौवन जो है वो नाशवान है, इसके लिए बुढ़ापा। बुद्ध ने यही तीन चार बातें देखी और संसार से विरक्ति आ गई उसको, दिखाया है ना उसके जीवन में। तो संसार के दुखों का चिंतन दूसरा। तीसरा, वैराग कैसे लाए, थोड़ा सहज कुछ कि सहज है ही नहीं, परमात्मा प्यार, इस प्यार में मगन हो जाओ तो संसार स्वतः ही भूल जाएगा। परमात्मा प्रीत, प्रीत मित गीत रीत, इस प्रीत में तो सहज अशरीरी हो जाएंगे और सहज संसार भूल जाएगा। परमात्मा प्रेम, इतना भर दो, इतना भर दो, इतना भर दो, जब बड़ा लड्डू मिल जाता है तो छोटा लड्डू छोड़ना नहीं पड़ता है। छोटे बच्चे को दो दो, एक बड़ा लड्डू एक छोटा लड्डू, वो अगर बड़ा लड्डू ले लेता है तो क्या ऐसा कहा जाता है कि उसने छोटे लड्डू का त्याग किया? त्याग किया ही नहीं, उसको बड़ा मिल गया है। जब भगवान मिल जाता है तो उसके सामने संसार कौन है? संसार तो छोटा लड्डू है, बड़ा लड्डू मिल गया ना, अभी और क्या चाहिए? बाप मिल गया, उसके साथ सब कुछ मिल गया, उसमें सब कुछ आ गया। आज की मुरली में भी एक जगह है कि हमको बाबा पूछते, पहले कभी मिले थे? हाँ, कल्प पहले मिले थे। कब मिले थे, क्या पाया था? विश्व की बादशाही पाई तो उसमें सब कुछ आ जाता है। आज की मुरली में है ना, विश्व की बादशाही पाई तो उसमें सब कुछ आ जाता है। तो बाप को पाया तो उसमें सारा संसार आ जाता है, और बाप को छोड़कर अगर संसार को पाया तो ना तो संसार मिलेगा ना तो बाप मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto it। बाइबल में एक महावाक्य है कि पहले परमात्मा और परमात्मा का राज्य लो, और संसार की जो भी छोटी छोटी चीजें हैं वो बाद में उसमें ऐड हो जाएगी। ऑल दीज थिंग्स, खाना क्या है, पीना क्या है, रहना क्या है, जो कुछ करना है वो उसमें ऐड हो जाएगी। बट फर्स्ट सीक ही फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, परमात्मा का राज्य और परमात्मा को पहले पाओ, वो सब आपे ही मिल जाएगा। तो परमात्मा प्रीत में मगन हो जाने से वैराग आ जाएगा। और आशीष भाई, वैराग आने के लिए क्या करें? मरीजों को देखो, ये भी अच्छा है, थोड़ा सा बीच बीच में चक्कर लगाना चाहिए अस्पताल में। शमशान में जाके क्या करना है? तपस्या, योग। शमशान में जाकर चिताओं को जलते हुए देखना, उससे भी थोड़ा वैराग तो आ ही जाएगा। कैसे बचा पाओगे अपने आप को वैराग आने से? उस दिन भी बताया था ना, बुद्ध के पास कोई भी जब संन्यस्त होने के लिए आता था तो वो उसको कहते थे कि जाओ पहले 3 मास मरघट में जाकर बैठो, सुबह से लेकर शाम तक बस एक ही काम करना, चिताओं को जलते हुए देखना, एक ही काम करना बस, उसके बाद आना, तब तुमको संन्यास की दीक्षा दी जाएगी। सुबह से लेकर रात तक कैसे रोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, चिताओं की लपटे जो है वो वैराग को उत्पन्न करेगी। तो शमशान घाट, दूसरा अस्पताल, और क्या करें वैराग लाने के लिए? रोज न्यूज देखे, रावण की क्या प्लानिंग चालू है। वो साक्षात्कार के बाद आया, पर साक्षात्कार के बाद आया। वो हो गया। वैसे आज की मुरली में बाबा ने बोला, अगर बाबा कुछ नहीं बताएंगे, साक्षात्कार नहीं कराएंगे क्या होने वाले, नहीं तो वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। तो मन की आंखों से देखना, सब कुछ नष्ट होते हुए देखना, सब कुछ खत्म होते हुए देखना। वैसे तो बाप तो आया ही उसी कार्य के लिए ना, सबका क्रियाक्रम करा के जाता है पर उसका नहीं होता है। उस दिन बोला ना, बाप तो आया ही है, मैं तुम सबके शरीरों को जलाकर तुम्हारी आत्माओं को ले जाने आया हूं। तुमने बुलाया था ना मुझे, हे पतित पावन आओ, दुख हरो, तुमने ही बुलाया था। तब याद था तुमको किसको बुला रहे हो? तुमने तुम्हारी मृत्यु का आह्वान किया था, तो अब मैं आया हूं, तो अब चलो, अब मरो। तो मन से देखना, सब कुछ नष्ट होते हुए, ये भी वैराग लाने की विधि है। और कोई विधि? स्वयं ही स्वयं का संस्कार देखना, स्वयं ही स्वयं की अंत्येष्टि यात्रा वो देखना, जा रही है, लोग कितने खुश हो रहे हैं अंदर ही अंदर, अच्छा हो गया, गया बहुत बढ़िया। हम सोच रहे थे कि हम हैं तो हमारे वजह से क्या क्या सेवाएं हो रही है, पर ये भूल रहे हैं कि हम जाने के बाद जो दूसरा हमारे स्थान पे आएगा वो 10 गुना अच्छी सेवा करेगा। ये हमारा भ्रम है कि हम सोच रहे हैं कि बहुत ही अच्छे हम सेवा कर रहे हैं, लोग सोच रहे अच्छा हुआ, गया बहुत बढ़िया हुआ, रुके हुए हैं वहां, अभी पूरा हुआ भी नहीं, पर एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे, चलो घर, अभी चलो मधुबन, चलो अभी आज तो क्या होगा, हलवा। तो देखना, सुनना, और क्या करेंगे वैराग लाने के लिए? क्या करेंगे? मेंटल हॉस्पिटल में जाना है, अच्छा वो भी अच्छा है। उनकी अवस्था देखना, कैसे परेशान है, बहुत अच्छी बात है। पागलखाने में जाकर स्टडी करना, उनको साक्षी होकर देखना, तो भी थोड़ा वैराग आएगा। और हाँ, चलती फिरती लाशें, उस दिन मुरली में भी कहा था बाबा ने, तुमको सदैव मौत की अवस्था में रहना है, जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। सन्यासियों का एक ग्रुप है जो अपने साथ हमेशा एक कंकाल रखता है, स्केलेटन। अगर देह की आसक्ति हो जाए तो उसको सामने करके देखते और अपने आप बात करते हैं उससे, कहां है तुम्हारा सौंदर्य, तो उसको भी देखना थोड़ा बीच बीच में। तो ये सभी बातों से वैराग, और बाबा ने इस मुरली में जो हमको जो कहा है वो है साधनों से। बाबा कह रहे यूज तो करो, प्रयोग तो करो, आवश्यकता तो है, परंतु उसके वशीभूत नहीं हो जाओ। ऐसा नहीं कि वो नहीं है तो नहीं, ऐसा नहीं कि सोफा अगर नहीं मिला तो योगी नहीं लगेगा, लाइट नहीं लगा तो लाल लाइट नहीं तो योगी नहीं, चित्र अगर नहीं, ट्रांसलेट अगर नहीं तो योगी नहीं। कोई भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। कुछ है कुछ नहीं है, भोजन है भोजन नहीं है, हर चीज से इंडिपेंडेंट। बाबा ने कभी कहा है जो सच्चे योगी बच्चे होंगे दो चार दिन भी भूखे रहे तो मस्ती में रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको, मर नहीं जाओगे। हाँ, मुरली की खुराक तो मिल जाती है। सबसे पहले तो ये देखना है कि मुझे मेरे अंदर राग कहाँ कहाँ है, किस किस चीज में राग है, और उस राग को खत्म करना है, उसको विराग में परिवर्तन कर देना है। उसके दोष, संसार के प्रति दोष दृष्टि, इसको कहा जाता है संसार के प्रति दोष दृष्टि, संसार के दुखों का चिंतन। संसार, व्यक्ति दुखी है परंतु उसको सुख मान रहा है। जैसे सुबह कहा था ना, वो जो कुत्ता होता है सूखी हड्डी को पकड़ता है और चबाता है उसको, इतना चबाता है, इतना चबाता है, इतना चबाता है, और बड़ा आनंद आता है उसको। उस हड्डी में कुछ भी नहीं है, वो हड्डी चबाते चबाते उसके ही मुंह से खून आता है और वो खुद का ही खून पीता है, और उसको लगता है वो खून, वो स्वाद उस हड्डी का है, वो हड्डी का स्वाद है ही नहीं। और वो झगड़ता भी अगर दूसरे कुत्ते आ जाए उस हड्डी को लेने तो कुछ भी करने को तैयार है वो, पर उस हड्डी को नहीं छोड़ेगा। ये विषय जो है, ये वासनाएं जो है, विषय वस्तु जो है, वो भी उस हड्डी की तरह ही है। व्यक्ति को लगता है कि उससे सुख प्राप्त हो रहा है पर सुख उसमें है ही नहीं। जैसे घोड़ा होता है, वो घोड़ा जाता है और वो झाड़ियां होती है, बहुत कांटे होते हैं, वो पत्तों को खाता है, यहां से खून आ रहा है, उसको लगता है वो पत्तों का स्वाद है जो उसके खून का ही खून का स्वाद होता है, वो भी भ्रांति में है। वैसे मनुष्य की भी गति वैसी ही है, वो ढूंढ रहा है, उसको लग रहा है ये सुख है परंतु वो सुख है ही नहीं, वो तो मुखौटा है बस, स्क्रीन सेवर, अंदर से तो दुखी समाया हुआ है उसमें भी। तो साधनों के बारे में बाबा ने कहा, आगे क्या कहा, पांच प्रश्न बाबा ने कहा, सूक्ष्म चेकिंग करो, 18 बंधन, 18 बंधनों की बात है। किसी ने निकाले वो 18 बंधन? बाबा ने कहा मुक्त की परिभाषा, स्वप्न तक बंधन की रूपरेखा ना हो, ऐसा इस वर्ष बाप दादा देखना चाहते। कौन से वर्ष? 99। और क्या देखना चाहते हैं? जो पांच प्रश्न बताए, सूक्ष्म चेकिंग करो, अंतर्मुखी होकर सूक्ष्म चेकिंग करो। क्या सूक्ष्म चेकिंग करो? ऐसी सूक्ष्म चेकिंग करो कि फिर छोटी बहनें बड़ी बहनों को बताए, बड़ी बहनों से फिर वो जोनल हेड पर जाए, हेड से फिर मधुबन में आए, और फिर मधुबन में आने के बाद में ताली बजेगी और बाप दादा प्राइज देंगे, परंतु अभी केवल मुबारक देते, प्राइज बाद में देंगे, बोला ना कल। कौन से प्रश्न थे वो? सूक्ष्म चेकिंग करो, बाबा ने कहा सूक्ष्म चेकिंग। सुख दुख तो नहीं, किसी को दुखी तो नहीं किया, इसमें खुश नहीं हो जाओ बस। सुख का खाता कितना जमा किया, सुखी कितनों को किया, एक। दूसरा प्रश्न, नाराज तो नहीं किया परंतु राजी कितनों को किया, और राजी भी किसको किया, जो नाराज है उसको राजी किया कि जो पहले से ही राजी है उसको राजी किया। एक सेकंड में, परमधाम में, ऊंचते ऊंच परमधाम में बाप के साथ बैठकर क्या करो, रहम की दृष्टि आत्माओं को दो। क्या करना है? योग का अभ्यास, आत्मा इस तन से ऊपर चली जाए, तत्व तत्व में विलीन हो जाए, तत्व रहे ही ना, शरीर खत्म, और आत्मा बाप के साथ बैठकर आत्माओं को रहम की दृष्टि दे।
प्रभु।
तीसरी चेकिंग पॉइंट, व्यर्थ संकल्प तो नहीं चले परंतु समर्थ का खाता, समर्थ संकल्प कितने चले। चौथी चेकिंग, शुभ भावना तो रखी परंतु उसका रिस्पांस क्या था। पांचवी चेकिंग, बदले ना बदले परंतु मैं संतुष्ट रहा। तो बाबा ने कहा ये सूक्ष्म चेकिंग करो, अगर ये चेकिंग करो और इसमें पास विद ऑनर है तो बाप दादा प्राइज देंगे। तो पूरी मुरली में एक तो वैराग की बात थी और दूसरी ये सूक्ष्म चेकिंग की बात थी। फिर आगे माइक के बारे में है, ड्रिल के बारे में है और दो तीन बातें हैं वहां पर। तो कल बाप दादा आ रहे हैं, तो कल का दिवस ब्राह्मणों के जीवन का कैसा दिन है, अनमोल सर्वोत्तम स्वर्णिम दिवस है। ऐसा दिवस कि जिसमें हमारा मिलन परमात्मा से हो रहा है, केवल हमारा ही नहीं। हम सोचते हैं कि हमारा भगवान से बहुत प्यार है, पर ऐसी कितनी आत्माएं उस सभा में होगी जिनका हमसे न जाने कितना अधिक, कई गुना अधिक प्यार होगा बाबा से। वो दिखाया है ना, अर्जुन को एक बार अहंकार हो जाता है कि मेरा भगवान से सबसे ज्यादा प्यार है, मेरे जैसा कोई भक्त है नहीं कृष्ण का। वो जाता है तो देखता है एक ब्राह्मण तलवार है उसके पास और सूखी घास खा रहा है। उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये ब्राह्मण है, सूखी घास खा रहा है, अहिंसक है, परंतु तलवार किस लिए रखा है। वो उसको पूछता है कि हे ब्राह्मण, तुमने ये तलवार किस लिए रखी है, तुम्हारे ऐसा लगता है तुमको देखकर कि तुम तो बड़े अहिंसक हो। वो कहता है मेरा ऐसी कुछ चार ऐसे मेरे महान शत्रु है जिनको अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं इनको बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। तो अर्जुन को आश्चर्य होता है, बोलते कौन से तुम्हारे ऐसे महान शत्रु है। सबसे पहले तो नारद दिन रात कीर्तन करते रहता है और मेरे प्रभु को बिल्कुल सोने नहीं देता है, ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं इसको देख लूंगा क्या करना है इसका, क्योंकि अर्जुन को अहंकार रहता है कि मेरे से ज्यादा भगवान को कोई प्यार नहीं करता। वो कहता है तुम्हारा दूसरा शत्रु, अर्जुन ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है, दूसरा शत्रु वो द्रौपदी सबसे बड़ी शत्रु है मेरी। वो जब वनवास में थे और वो जो दुर्वासा ऋषि आए थे तो मेरे प्रभु तब भोजन कर रहे थे, उसने ऐसा आह्वान किया कि भोजन छोड़कर नंगे पांव भगवान को भागना पड़ा उसकी मदद करने के लिए, बिल्कुल तनिक भी ध्यान नहीं है उसको। तो बोलता है तीसरा तुम्हारा शत्रु, मेरा तीसरा शत्रु वो जो दुष्ट प्रहलाद था वो है, मेरे भगवान को उसने विवश कर दिया उस खंभे में प्रकट होने, खंभे से प्रकट होने के लिए। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अभी अर्जुन को आश्चर्य होता है तुम्हारा चौथा दुश्मन कौन है, बोलता है अर्जुन। तो बोलता है उसने क्या कर दिया, अभी उसने देखो भगवान को अपना सारथी बना लिया, उसकी सुख सुविधाओं का थोड़ा तो उसको ध्यान होना चाहिए। अगर मुझे अगर ये मिल गए चारों, इसके लिए मैंने ये तलवार ये रखा है, अगर इनमें से कोई मिल गया तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन को लगता है देखो मैं सोच रहा था कि मेरे से ज्यादा भगवान को कोई प्यार ही नहीं करता, ये देखो कैसे है। इनको तो मांगना तो दूर, पर जो उसको मांगते हैं और उसको तकलीफ होती है उसकी वजह से इसको तकलीफ हो रही है, इतना प्यार करने वाले है। हम सोचते हैं कि हमारा बाबा से बहुत प्यार है पर कहानी खत्म। तो हम सोचते हैं कि हमारे जैसा त्याग, हमारी जैसी तपस्या, हमारे जैसा समर्पण किसी और का नहीं। अरे सभा में ऐसी ऐसी आत्माएं बैठी है, न जाने जन्म जन्म से कितनी जिन्होंने भक्ति की है और अभी पहली बार आकर मिल रही होगी, कैसा वो प्रेम का उन्माद, कैसा वो प्रेम में डूब जाएगी उसको मिलकर पहली बार। ऐसी कोई गुप्त आत्माएं सभा में होगी, ऐसी कोई माताएं होगी कि जो उसके प्यार में डूबी हुई। कैसे कैसे यहां आती है, मधुबन में सेवाधारी माताएं आती है, हॉस्पिटल में जाती है तो सबसे पहले तो उनके पास पैसे ही नहीं है, वो बार-बार उतना ही टिकट का पैसे लेके आई है और टिकट का पैसा है अभी जाने के लिए 200 रुपए बस, इतना सहज घर से आई भी नहीं है। तो भगवान इसके लिए तो फिदा है ना। हाँ बोल रहे। तो कितना प्यार, जो जितना प्यार में मगन है, अव्यक्त स्थिति में स्थित है, उसको परम आनंद आएगा उसके प्यार में लीन होने के लिए। और भी कोई बात करनी है तो स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बना के रखना, कहीं पर भी व्यर्थ में नहीं जाना, कहीं पर भी टाइम वेस्ट नहीं करना, निरंतर ज्ञान के चिंतन में मगन रहना, निरंतर मुरली का अध्ययन पठन पाठन करते रहना, ज्ञान में ही लगे रहना, ऐसी कोई भी चीज नहीं करना कि जिससे हमारी स्थिति नीचे आ जाए, क्योंकि स्थिति नीचे आ जाना यह सबसे बड़ा दंड है। संगम योग का आनंद उन्हीं आत्माओं को आता है जो ज्ञान में मगन है, योग में मस्त है, बाकियों के लिए तो दुख है। फिर बाप का बनने के बाद भी दुखी हो है तो उसको क्या कहेंगे, खुशियों का भंडारी मिलने के बाद भी दुखी है तो उसको क्या कहेंगे, बदनसीब कमबख्त। तो अपनी स्थिति को महान, इस यज्ञ में सबसे आगे वही है जिसकी स्थिति आगे है, तो अपनी स्थिति को शक्तिशाली महान बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, अव्यक्त बनाना है, व्यर्थ से स्वयं को बचाना है, तो ही अव्यक्त बाप दादा से मिलन में बहुत आनंद का अनुभव होगा, आत्मा भरपूर हो जाएगी, उसे और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, उसको वैराग्य स्वतः ही आ जाएगा, बड़ा लड्डू मिल जाएगा, छोटा छूट जाएगा। अच्छा, ओम शांति।